हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम राम
नारायण 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 ऐसे योग दर्शन में योग की परिभाषा खास बताई है। जिस योग में सब विकल्प निर्विकल्प सबीज निर्बीज धर्म में कई समाधियां होती है, वे सबकी सब समाधियों का समावेश योगस्थित व्यक्ति योग शब्द किया, योग वो योग है, उसके अधिकारी माने हैं मूल क्षेत्र विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, ये पांच भूमि है अंतःकरण की, जिसमें एकाग्र और निरुद्ध है दो में जागृत समाधि होती है। चित्तवृत्तियों का निरोध करना योग का है। गीता ने कहा है समता को योग, समत्व योग उचित है, तो समता में उसमें भेद है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध तो किया जाता है तो वृत्तियां वृत्तियां निरोध हुई, समता परमात्मा का स्वरूप है तो वो निरोध का फल बताया है कि तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम, निरोध होने पर स्वरूप में स्थिति होती है और गीता स्वरूप में स्थिति को ही योग है, इसी बीच निरोध में तो काम नहीं, ये योग में फर्क है। अब ये प्रश्न आया कि एक चित्त वृत्तियों का निरोध करना और एक
थोड़ी थोड़ी देर में आपने कहा चुप रहना,
चुप रहना, तो चुप रहने में निरोध में क्या फर्क है? खूब ध्यान से आप लोग सुने, मैं समझा दू, पूछो बार बार। देखो परमात्म तत्व की प्राप्ति मैं जो कहता हूँ उस विधि के अनुसार किया जाए तो जड़ के त्याग से चिन्मय तत्व की प्राप्ति होती है और साधन जितने किया है जड़ तत्व जड़ता के द्वारा चिन्मय तत्व की प्राप्ति नहीं होती, मूल बात यह है। प्राय आदमियों ने मान रखा है कि जैसे शरीर इंद्रियां मन बुद्धि इनको लगा करके हम काम करते हैं, संसार का काम होता है और इनकी सहायता से ही परमात्मा प्राप्ति होती, ऐसी जैसी हुई है कण कण में जैसे भीतर हुई जैसी भी बात है, तो इसका मैं निरोध निषेध नहीं करता हूँ, परंतु परमात्म तत्व जब कभी प्राप्ति होगी तो निर्मोह और निरहंकार है, अहंकार ममता मन बुद्धि इंद्रिया इसके त्यागने से प्राप्ति होगी, तो जड़ के त्याग से तत्व की प्राप्ति होती है, जड़ता के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होती। चिन्मय तत्व तो जड़ में भी परिपूर्ण है पर जड़ तत्व है और चित्त में है नहीं, वहाँ अभाव है जड़ता का, तो जड़ता के द्वारा आप चिन्मयता की प्राप्ति कैसे कर पाएंगे? अब चित्त वृत्ति निरोध में क्या है कि चित्त वृत्तियों चित्त की वृत्तियों का निरोध करो तो निरोध वृत्तियों का करोगा ना, तो चित्त वृत्ति चेतन थोड़ा ही है, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो अंतःकरण है ये, तो कर्ण के साथ भी मैं आबाद काम रहेगी, जहाँ कर्ण से अतीत तत्व है, कर्ण क्या कोई कारक वहां नहीं होता, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण कोई साई कर्ण वहां नहीं जाता, तो कर्ण से अतीत तत्व है उसको कर्ण के द्वारा कैसे प्राप्त कर लोगे? तो चित्त वृत्तियों का निरोध है तो निरोध वृत्तियों का निरोध किया आपने, वृत्तियों के निरोध से वो निरुद्ध अवस्था से कोई परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी? परमात्मा से प्राप्ति नहीं होगी, निरुद्ध होने से संसार की निवृत्ति होगी, निवृत्ति होने पर परमात्मा प्राप्ति होगी, तो वो भी शरण है संसार की निवृत्ति करता है, पर चुप रहने में निवृत्ति नहीं है, चित्त की वृत्तियों का संबंध विच्छेद है, चुप रहे कुछ नहीं करे, तो कुछ नहीं करने में नहीं करने का भी आग्रह नहीं चाहिए, कुछ चिंतन नहीं करना ये भी आग्रह हो तो वही वही जो दोष चित्त की वृत्तियों में आएगा वही दोष उसमें आएगा, नहीं वो तो सिर्फ कृत्य अर्थ न अकृत्य भी है कष्ट न शास्त्र सर्वभूत सुख से कृत्य प्रभाष, तो करने से मतलब नहीं है, तो न करने से भी मतलब नहीं है। करने का आग्रह छोड़ रहा है तो न करने का भी आग्रह नहीं रखना है, किंतु चुप हो जाना वो न करने का आग्रह है, न करने का आग्रह है। न चित्त की एकाग्रता से मतलब श्वेत द्वेष है, न राग है, न किसी वृत्ति से कोई भी संबंध नहीं रखना। न राग करना है, न द्वेष करना है, न हर्ष करना है, न शोक करना है, न प्रसन्न होता है, न नाराज होना है। किसी अवस्था से कोई सुख दुख लड़े ही नहीं हमें, तो उसे क्या होता है, उनके साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। जब संबंध विच्छेद हो गए, कारण गुण संगो से सदस्य होनी जन्म सु, उसने जन्मिया के होने में तो गुणों का संगी कारण है, और गुणों से असंगता होती है, मुक्ति नहीं तो है क्या, और स्वतः सिद्ध है वो मुक्ति गुणों के संग से, गुणों का संग मिटा दिया। तो चित्त वृत्ति निरोध करने से वृत्तियों का निरोध होता है, तो वृत्तियों के निरोध में अंत में परिणाम परमात्मा प्राप्ति होती है, परंतु वृत्ति का निरोध संग्रह कुछ नहीं करना, ना तो चंचलता रखना है, चंचलता को मिटाना है, न चित्त वृत्ति से संबंध नहीं। अब ध्यान देकर आप लोग सुने, एक बात दूसरी बताओ, युक्ति एक युक्ति ये बताई कि जड़ के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होती, जड़ता के त्याग से चिन्मयता की प्राप्ति होती। एक बात जी आपको बात बताऊं कि जैसे ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा, जिसको निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, उस निर्गुण ब्रह्म का दुनिया के साथ कोई संबंध है क्या? दुनिया में कितनी गायें कट रही है, कितने मनुष्य दूसरे, कितनी हत्याएं हो रही है, और कितने दान पुण्य यज्ञ आदि हो रहे हैं, तो शुभ अशुभ कर्मों से कोई संबंध नहीं है ब्रह्म के। ये परमात्मा का स्वरूप ब्रह्म रूप आत्मा कहते हैं, तो जैसे पाप पुण्य दुनिया के उससे अपने संबंध नहीं है, ऐसे अपने अंतःकरण से भले से बुरे से कुछ भी संबंध नहीं है, तो ब्रह्म रूप ही प्राप्त हुआ कि नहीं? शुभ वृत्तियों से अशुभ वृत्तियों से कुछ भी संबंध नहीं है हमारा। तो जैसे दुनिया मात्र के पाप पुण्यों से ब्रह्म को कोई संबंध नहीं, ऐसे अंतःकरण में आपकी अच्छी मंदी वृत्तियां कैसी वह कैसी नहीं, इससे कोई संबंध ही नहीं है हमारा। वृत्तियां अच्छी हो जाए, मंद हो जाए, कोई याद हो जाए, नहीं याद हो जाए, चिंतन हो जाए, चिंतन रहित हो जाए, कोई संबंध नहीं। तो कोई संबंध नहीं तो ब्रह्म रूप हो गए कि नहीं भाई? अब दुनिया मात्र के साथ संबंध परमात्मा का, और तुम्हारे संबंध शरीर के साथ, तो स्थूल सूक्ष्म और कारण, और तीनों शरीरों में कोई संबंध नहीं हमारा। न अहंता है, न ममता है, न उसमें हर्ष है, न शोक है, न चित्त वृत्तियां, रहे तो अच्छी बात, न रहे तो अच्छी बात। नींद नहीं आ रही, नींद आने में दोष है, इस बात क्या है? नींद में लय संबोधी है चित्तम, लय हो जाने से वृत्ति जागृत नहीं रहती, तो चिन्मयता का अनुभव अंतकरण नहीं कर सकता, लय हो जाएगा। वो लय तो हो नहीं, परंतु चित्त से कोई मतलब नहीं, चाहे निरोध हो, चाहे चंचल हो, चाहे विहित हो, चाहे निषिद्ध हो, चाहे बढ़िया हो, चाहे घटिया हो, किसी से न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, तो संबंध विच्छेद होता है। चित्त वृत्ति निरोध से वृत्तियों के साथ संबंध विच्छेद नहीं होता, वृत्तियों का निरोध रहा, और एक चुप रहा कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो पूरे के जाओ, तो उस समय में किसी वृत्ति के साथ संबंध नहीं है, वहां वृत्ति के साथ संबंध विच्छेद है। कोई वृत्ति अंतर्गण की किसी वृत्ति, न बुद्धि वृत्ति है, न चित्त वृत्ति है, न अहम वृत्ति है, कोई वृत्ति नहीं, चुप रहेगा साहब, तो किसी के संबंध में संबंध विच्छेद होते तत्व की प्राप्ति सतह हो जाएगी। ये मतलब अब इसमें शंका करो,
एक सेकंड भी रुका जाए, दो सेकंड भी रुका जाए, थोड़ी थोड़ी देर में चुप हुआ जाए,
हाँ।
तो ये तो महाराज जी चित्त वृत्ति को ही लेके होगा, और
ना चित्त वृत्ति थी, चित्त वृत्ति को नहीं है, वृत्ति रहित होना मैंने कहा है। मैंने सुना क्या गया, चलते फिरते ही चुप हो गए, तो चुप होने का अर्थ क्या हुआ? न बाहर की कोई क्रिया है, न इंद्रियों की, न अंतःकरण की क्रिया है, अंतःकरण की कोई क्रिया नहीं, अंतःकरण की क्रिया से कोई संबंध नहीं, अंतर्गण है जहाँ जाएगी। जैसे प्राणायाम है वो विरेचक पूजक और कुंभक ऐसा होता है, चतुर्थ है वृत्ति निरोध का, चौथा प्राणायाम है। इस तरह से ये है, अब चुप हो गए, तो चुप होना जो है वो समता है, इसका नाम समता। समता रहेगी तो समता में वृत्ति निरोध में समता नहीं है, सुख चंचलता के साथ विरोध है और विरोध के साथ में आग्रह है, आकर्षण है, प्रियता है, विरोध के साथ और चंचलता के साथ विरोध है, तो दोनों वृत्तियां रहेगी, लड़ाई रहेगी ना, द्वंद रहेगा। निर्द्वंद ही महाभाव सुगम बंधा प्रमोचते, तो निर्द्वंद कब होंगे, ना अच्छा है ना मंदा है, ना भला है ना बुरा है, ना भेद है ना निषिद्ध है, संबंध नहीं हमारे किसी से, तो एकदम चुप हो जाओ एक क्षण भी, तो एक क्षण भी चुप हो गए तो क्या हो गया, वृत्तियों का संबंध विच्छेद हुआ एक दो क्षण भी। अब एक दो क्षण क्यों कहा कि इतना वृत्ति रहित होना मनुष्य के स्वभाव की बात नहीं है, स्वभाव में चंचलता है, क्यों कि अंतःकरण के साथ एकता करी, चंचल है अंतःकरण, प्रकृति कभी अक्रिय रहती ही नहीं, महाप्रलय में भी अक्रिय नहीं रहती, अब उसके साथ संबंध रहने से कार्यते यवशः कर्म सर्व प्रकृति गुणी, प्रकृति गुणों में संपूर्ण को कर्म करने ही पड़ते है, नहीं कष्ट क्षण भी अर्जातु, कोई भी प्राणी और कभी किसी धातु अवस्था में जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि किसी अवस्था में भी और कोई भी कष्ट मन कोई भी और क्षण मात्र भी अकर्म कृत न कर्म की वजह नहीं रहता, क्योंकि कार्य से सर्व प्रकृति गुण ही अवश्य प्रकृति जन गुण परिवर्तनशील, उनके अवश्य होकर क्रिया रहित कैसे हो जाएगा, तो क्रिया रहित हो नहीं सकता। इस वास्ते एक क्षण कहा मैंने कि उसे कुछ चिंतन करे, जैसे वाक्य वृत्ति का मैंने इसको बताया, तो शंकराचार्य कहते हैं कि पहला संकल्प शांत हुआ मन में और दूसरा संकल्प पैदा हुआ, तो दोनों संकल्पों के बीच में संकल्प नहीं है, कोई चीज वृत्ति नहीं, उसको वो कहा उन्होंने अभ्यास बताया शंकराचार्य ने महाराज कहा एक क्षण एवं विकल्प से निरोधनम क्रमेण अध्यक्षता नित्यम ब्रह्मानुभव कांक्षी, जो ब्रह्म का अनुभव करना चाहता है उसके लिए एक दो क्षण भी तीन क्षण भी पहला संकल्प तो शांत हो गया, दूसरा संकल्प पैदा नहीं हुआ, वहाँ तत्र साक्षी निराकुल, वो साक्षी शुद्ध रूप रहेगा, शुद्ध रूप रहेगा, क्यों रहेगा कि प्रकृति के साथ संबंध नहीं रहा, पहला संकल्प शांत हो गया, दूसरा संकल्प पैदा नहीं हुआ, उस संधि में, तो वह संधि कितनी मैं वो मैं बात बताता हूँ, वो नहीं मतलब अभ्यास रहा, मैं अभ्यास नहीं कहता हूँ, मैं को तो चुप हो जाओ, अभ्यास वो नहीं करना, मन कोई फुरना नहीं करनी, कोई क्रिया नहीं करनी, बाहर की भीतर की अंतकरण की कोई क्रिया नहीं करनी है, किसी के साथ कोई संबंध नहीं, क्रिया के साथ संबंध होते ही प्रकृति के साथ संबंध होगा, क्यों प्रकृति क्रियाशील है, परमात्म तत्व अक्रिय है, तो क्रियाशीलता के साथ संबंध होने पर दृढ़ता के साथ संबंध होगा ही, कोई अभ्यास करो बिना अंतकरण और इंद्रियों के अभ्यास कैसे करोगे, तो अभ्यास में तो चित्तवृत्ति होती है, इसमें क्या होता है संबंध विच्छेद होता है चित्तवृत्ति का, अब शंका करो मानो निरोध किए नहीं अंतकरण की सहायता नहीं है, निरोध में तो अंतकरण की सहायता है, अंतकरण का निरोध करना पड़ेगा, निरोध करने से वो निरोध वाली समाधि होगी, इसमें अंतकरण समाधि इसमें अंतकरण सहायता नहीं, अपने उसे संबंध विच्छेद, अरे वो संबंध विच्छेद भी जानकर करोगे तो बुद्धि वृत्ति से करोगे तो बुद्धि वृत्ति साथ रहेगी, नहीं तो से कृत्य नार्थ न अकृत ही नहीं है सर, अकृत से ही प्रयोजन नहीं आना चाहिए, न करने पर भी आग्रह नहीं आना चाहिए, स्वतः शांत हो जाए, जैसे कुछ भी चिंता में करो आप अब यह भी देख लो करें बैठे बैठे ही, जिसमें ये युक्ति बताई मैंने श्वासों की प्रथम दिन ध्यान हुआ प्राण से सुच रहता है पसंद लगा, ऐसे कर बाहर श्वास छोड़ करके आप देखो अभी प्रत्येक से देख लो तो कुछ चिंतन नहीं है, कोई चिंतन नहीं है, ना निरोध है ना चंचलता है, ऐसे संकल्प विकल्प होते हो उनको दूर करना हो तो आंखों से ऐसे लगा ऐसे चुप हो जाओ, उसमें एक क्षण बिल्कुल कुछ भी कोई संकल्पता वृत्ति आएगी नहीं, ज्यादा संकल्प विकल्प मंगाओ गोटू से जोर जोर से, अब कैसे रोके तो आप आधा से करो केले से तो संकल्प कट जाएगा, कुदर जाएगा उसकी बोलो करके देखो, अभी करके देखो, इस बात कोई बात नहीं हुई, समय की बात नहीं, कोई आपको आसन लगाओ और ये करो पद्मासन से कुछ नहीं है, जी बैठे है, खड़े है बैठा तो थोड़ी आचार्य करके थोड़ी देर संग पैदा होने लग जाएगा, तो पैदा होने लग जाए उसमें भी अपना कोई संबंध नहीं है, जैसे दुनिया के मन के साथ हमारा संबंध नहीं, ऐसे अपना कहने वाला मन के साथ में हमारा संबंध नहीं, कि मन मन धातु एक है, जब शरीर शरीर पांच भौतिक है, स्थूल शरीर ऐसे सूक्ष्म शरीर सत्र तत्व का वो और कारण से जो अज्ञान वो सबका एक है, सबका एक है, तो जब दूसरे शरीरों के साथ में स्थूल होता है सूक्ष्म होता है कारण से ही संबंध नहीं, तो इस शरीर कहने वाला इस स्थूल सूक्ष्म कारण के साथ भी स्वतः संबंध कैसे हुआ, जल चेतन की गंथी पड़ेगी जद विमृषा, क्यों जल चेतन का संबंध होता नहीं तो गंथी पड़ेगी कैसे, पर सूर्य गर्मी आदत पड़ी हुई क्रिया करने की, बोले ऐसा फिर क्या करें, ये हरि से पैदा फिर क्या करें, हरि कहना नहीं है भाई, तो करने में प्रकृति का संबंध होगा, जहाँ करना छोड़ दिया चाहे एकाग्र करो चाहे चंचल करो संबंध रहेगा, तो एकदम चुप रहने में किसी वृत्ति की कोई सहायता नहीं है, अब इसमें शंका करो नाम जी जब जाओ होगी विरुद्ध प्रपंच भी होगी, क्या पूछते क्या है, देखो मैंने कल भी करके भी हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ, मेरी बातों को ठीक समझे बिना अगर अड़ंगा करो तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, आप समझो कि ये भजन ध्यान जब का विरोधी है, मैं विरोधी नहीं हूँ, पर ये बात कहूँगा तो जब का विरोधी है तो भगवान नाम जब करना चाहिए, मैं कभी निषेध नहीं करता, अब धन की बात मैं कहता हूँ कि धन का विरोधी है, अब विरोधी मैं नहीं हूँ, विरोधी तुम्हारी जो अज्ञता है महत्व दे रखा है जो कि परमात्मा की प्राप्ति बात है, उस गाँव में धन का विरोधी मैं क्यों हूँ, वस्तु का विरोधी मैं हूँ ही नहीं, ऐसे मैं जप ध्यान का विरोधी नहीं हूँ, इन जप ध्यान करने में आपको जड़ की सहायता लेनी पड़ेगी, और चुप रहने से सहायता छोड़कर बिल्कुल निरपेक्ष हो जाऊंगा, कोई कारक साथ में नहीं है, स्वतः स्वाभाविक, तो जड़ता का संबंध विच्छेद हो जाएगा, ये बात है, अब इसमें शंका हो बताओ,
रहना और नहीं रहना, ये क्रिया नहीं बनेगी,
ना ये नहीं बनेगी, ये नहीं, अगर क्रिया नहीं करना है त्याग करता हूँ तो बनेगा, क्रियाओं का मैं त्याग करता हूँ तो संबंध बन जाएगा, मैं करता नहीं हूँ तो संबंध बन जाएगा, मैं करता हूँ न करता हूँ बिल्कुल नहीं चुप, किसी का संबंध पड़ेगा, बढ़िया बात पूछी आपने, न करने का भी आग्रह संबंध जोड़ेगा ही, न करना भी इस बार नहीं वो कृत्य न अर्थ न अकृत्य नहीं रहा, तो आग्रह नहीं चाहिए, चुप हो गए, अब चुप हो गए जैसे श्वास को करके रोक दिया बाहर बाजू कुंभक किया, तो न रुचि के साथ संबंध है न पूर्व के साथ संबंध है, ये तो स्थूल बात बताई, मन की बात है सूक्ष्म होगी, बुद्धि की बात सूक्ष्म है, किसी साथ कोई संबंध नहीं, ना किसी लेना है ना किसी का देना है, आग्रह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आग्रह नहीं, इस बात से स्वाभाविक में चलते चलते खड़े रहेंगे, कुछ चिंता नहीं, सत्य ही आग्रह होगा तो वो का वो संबंध है, जो चित्त वृत्तियों का निरोध है वो का वो ही संबंध यहाँ है, न करने पर भी आग्रह होगा तो न करने के साथ संबंध होगा तो भी वृत्ति में संबंध हुआ, करने का आग्रह तो करने पर संबंध हुआ, करना न करना दोनों ही नहीं, अब दोनों से उपराध कैसे हो गए, दोनों से उपराध होने का उपाय क्या, कि दोनों उपराध ये करना कुछ है ही नहीं है, न निरोध करना है न चंचल करना है न अच्छी वृत्ति करना है न बुरी वृत्ति करना है, स्वतः स्वाभाविक चुप हो गए, तो चुप होती स्थिति परमात्मा तत्व में ही होगी, अरे करना न करना कुछ है वो प्रकृति से संबंध होगा, और प्रकृति के द्वारा परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, प्रकृति के त्याग के द्वारा, जनता के त्याग के द्वारा जनता की प्राप्ति होती है। तो त्याग शून्यता से कैसे हो, कोई वृत्ति नहीं है, त्याग स्वतः ही है, संबंध विच्छेद है। तो निरोध में और इसमें क्या फर्क है, महाराज का प्रश्न रहा। तो निरोध में चित्त की वृत्तियों के साथ संबंध है, निरुद्ध अवस्था के साथ संबंध है। देखो निर्विकल्प अवस्था होती है, एक निर्विकल्प बोध होता है, ध्यान देखिए सुनते सूक्ष्म बात है। निर्विकल्प जो समाधि है वो निर्विकल्पता के साथ संबंधी है, समाधि अवस्था है, और निर्विकल्प बोध है वो अवस्था से अतीत है, किसी के साथ संबंध नहीं है निर्विकल्प बोध। अब निर्विकल्प बोध होने के बाद व्युत्थान नहीं होगा, और निर्विकल्प समाधि में व्युत्थान होगा, क्यों, निर्विकल्प एक अवस्था है। अवस्था जब कोई अवस्था है, विरोध हो निरोध हो, कोई अवस्था हो, अवस्था हुई तब तक तो प्रकृति के साथ संबंध है। अगर अवस्था से अतीत है, गुणातीत है, वो तो सतोगुण के साथ नहीं है, सतोगुण से भी अतीत है, सतोगुण के सुख संगे बंधाती ज्ञान संगीन बंधता है। तो निरुद्ध अवस्था के साथ भी संबंध रखोगे आप तो वहाँ पूर्णता नहीं है, संबंध विच्छेद होने से है। तो निर्विकल्प अवस्था में तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, तत्व की प्राप्ति में सहायक है निर्विकल्पता। मैं निषेध नहीं करता हूँ, निंदा नहीं करता हूँ, मैं उससे भी ऊंची बात कहता हूँ जो सच आप उसको वैसे, इस बात का मैं तिरस्कार नहीं है, निंदा नहीं, अपमान नहीं। निरुद्ध अवस्था बहुत अच्छी है, पर निरुद्ध अवस्था है और तत्व में अवस्था नहीं है, अवस्था अतीत है। तो उसमें भी निरोध का कोई आग्रह नहीं, चंचलता का कोई आग्रह नहीं, शुभ है अशुभ से कोई आग्रह नहीं, अपने संबंध नहीं है। दुनिया में पाप पुण्य कई होते हैं, अपना क्या संबंध है, हमारे को पाप पुण्य लगता है क्या, ऐसे संकल्प में कोई मतलब नहीं, हमारे को ना पाप है ना पुण्य है हमारे, ऐसी स्वतः ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि चार बताया। तो अविनाशी के सत हुआ, चेतन करके चित हुआ, और सहज रूप से आनंद हुआ, और चेतन अमल अमल का शुद्ध हुआ, तो सच्चिदानंद शुद्ध सच्चिदानंद हुआ। ये जरूर बताया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो चेतन सत हुआ ना, और चेतन हुआ, और सहज रूप से आनंद हुआ, और अमल मानो शुद्ध सच्चिदानंद था, ये जीव का स्वरूप हुआ। अब कुछ भी संबंध नहीं जोड़ेगा तो शुद्ध सच्चिदानंद नहीं रहेगा और क्या रहेगा। अभी मैं शंका करो, संदेह होता वो बोलो ना, चेतन में चैलेंज नहीं है। देखो एक बात एक और बताओ आपको, चेतन में संग्रह और त्याग संबंध विशेष संबंध ये दोनों जड़ता से होते हैं, स्वतः से
चेतन होगा
बिल्कुल नहीं
होगी।
क्या त्याग की पूर्णा में कहता ही नहीं कि त्याग के साथ संबंध मत जोड़ो, ग्रहण के साथ संबंध मत जोड़ो, मैं नहीं करूंगा चिंतन ये भी संबंध मत जोड़ो।
हाँ
तो वो तो मिस्टेक है, वो बिल्कुल आपका तो ठीक बात है, पर मैं कहता हूँ त्याग का भी संबंध ना हो और वृत्ति रहित का भी आग्रह ना हो, स्वतः स्वाभाविक वृत्ति शांत होती है। जैसे मैंने कहा कि जैसे झूला झूलते हैं तो झूले की कितनी तेजी से चलता रहे हो ठीक समता में आता ही है, वो जहाँ से डोरी लगी है वहां से समता में है, वो समता का आग्रह नहीं जाता है, सब जाता है। ऐसे समता के बिना आप रह ही नहीं सकते, कोई संकल्प शांत हुआ दूसरे संकल्प पैदा हो तो बीच में समता रहेगी।
भाई मेरा प्रश्न है, आप जैसे जड़ता के त्याग से होती है,
हाँ जी,
हर एक होती जड़ के साधन से होती
है, ठीक है,
जड़ साधन करते तो जड़ से तो खुद हो जाता है, तो जड़ से आप संबंध विच्छेद हो जाता
है, बहुत ठीक बात है।
जड़ता का त्याग जब चेतन कर रहा है जड़ विच्छेद
त्याग नहीं करता है। मैं जो अभी निर्वृत्ति कही है उसमें त्याग की भावना नहीं बताई मैंने, ये तो स्थूल दृष्टि बताई है कि जैसे ब्रह्म के साथ दुनिया का कोई संबंध नहीं है, जैसे दुनिया मात्र के साथ ब्रह्म व्यापक रहते हुए संबंध नहीं है, ऐसे आप शरीर में रहते हुए शरीर का अंतःकरण हो चाहे बहिःकरण हो चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, किसी के साथ आपका संबंध नहीं है तो आपकी स्थिति कहाँ होगी,
तो फिर तो होगी, फिर स्थिति करने वाला भी तो चरण से है, वो कैसे छोड़ेगा उस चरण को?
जड़ को छोड़ना नहीं, मैं छोड़ना नहीं कहता हूँ, त्याग ना मैं नहीं कहता हूँ। ये तो मैंने पहले बात बताई युक्ति, जिस युक्ति से मेरी बात पकड़ सको समझ सको कि जड़ता के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होती, जड़ता के त्याग से होती है। तो जड़ता का त्याग कैसे करें? मैं जड़ता के साथ संबंध छोड़ता हूँ, ये नहीं होगा जड़ता त्याग। उदासीन ये बात मैं बताता हूँ बड़ी मार्मिक, कि चित्त की वृत्तियों के निरोध का जो अभ्यास है इससे सिद्ध शुद्ध जल्दी नहीं होगा, क्योंकि चित्त के साथ ममता है। अरे ममता मल जल जाए, वो मल लगा करके चित्त को शुद्ध करना चाहते हो? अगर चित्त की चंचलता मिटाना चाहते हो तो आप उपेक्षा करो, ये उपाय बता दो उपेक्षा। जैसे शनि शनि उपरमेत,
ये उपरमेत भी तो पुत्र की वृत्ति से हो रहा है।
मैं पहले आरंभ में, ये आरंभ में जब ये वृत्तियां है तब, जैसे कूड़ा करकट पड़ा है तो झाड़ू देर कूड़ा करकट दूर करे, पर कूड़े करकट के साथ ही झाड़ू भी फेंक दे, जिससे उपराम हो गए उस वृत्ति को छोड़ दो। वो झाड़ू के संबंध है नहीं हमारे साथ साथ, बुद्धि के साथ हमारा संबंध है नहीं। उपरमेत जिस वृत्ति से उपराम होते हैं उस वृत्ति के साथ हमारा संबंध नहीं है, कि ऊपर की वृत्ति तो पैदा होती है नष्ट होती है, हमारा स्वरूप निरंतर रहता है।
ये संबंध नहीं है, ये कौन सोच रहा
है? स्वयं, ये स्वयं है ना, ये नहीं है। यही बात एक बताता है, शंकराचार्य महाराज के सिद्धांत से शुद्ध में कोई संकल्प नहीं है, ये बात ठीक है, परंतु ये जो उद्देश्य है मुक्ति हो, इसमें क्या चीज है? मुक्ति किसकी होगी?
हाँ,
नहीं तो बंधन क्या है, मुक्ति क्या है? अगर संबंध माना जड़ से वो बंधन है, मुक्ति है
बंधन
है। अब जड़ता का संबंध विच्छेद कैसे हो? तो यही तो मैं कहता हूँ, जड़ता हमारे साथ नहीं है, ये अपने साथ पहले से बोध है। ये आप संस्तु मने कृत्वा का तात्पर्य कि चिन्मयता में जड़ता नहीं है, ये अभी आपने जान लिया। अभी जान या चुप हो जाओगे तो जड़ता के साथ हमारा संबंध नहीं है, ये तो संस्कार पढ़ाई है आप में, ये तो संस्कार है ही। ये संस्कार आप साहब जड़ता का संबंध विच्छेद कर देगा कि जड़ता का संबंध है नहीं, रहता नहीं, कोई संकल्प संबंध रहता ही नहीं हमारे साथ में। तो संकल्प का न संकल्प का करना न करना दोनों के साथ हमारा संबंध नहीं है, तो हमारा संबंध नहीं है, इसकी केवल स्वीकृति है, संकल्पों की अस्वीकृति है, निषेध नहीं है। कारण शरीर से नहीं है, स्वयं से है। जो बंधन में वो मुक्त होना चाहता उसका है, परंतु वो मुक्त होना चाहता कब से बंधन है जितने, बंधन में होने पर मुक्ति चाह नहीं होगी, मुक्त हो गया। अरे मुक्त है स्वतः, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। तो स्वरूप कब तक कब है? कि जब तक इसका अनुभव नहीं है तब तक बंधन में है, अरे अनुभव होने पर तो स्वरूप से शुद्ध है। अब बात यह है कि जड़ता का संबंध विच्छेद कैसे हो, ये प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर में बताऊं तुम कुछ चिंतन करेगा, हमारे चिंतन कुछ है नहीं, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी चिंतन नहीं करो, चुप रहो तो कहाँ रहोगे आप, स्थिति कहाँ होगी? हमारे करने से न करने से कोई मतलब नहीं, त्याग से ग्रहण से कोई मतलब नहीं, वृत्ति से न वृत्ति से कोई मतलब नहीं।
चुप रहना किसी वृत्ति का नहीं है क्या?
ना, किसी वृत्ति का नहीं है। वृत्ति का चुप रहना पर भी स्थिति आपकी वृत्ति के साथ नहीं होगी, चुप का आग्रह होगा तो वृत्ति के साथ संबंध होगा ही आपका। चुप रहने का आग्रह नहीं, अचानक सोफे
चुप रहने का अभ्यास नहीं करना चाहिए, सहज स्वभाव से चुप
रहना। हाँ ये बात, तो मैं अभ्यास करोगे तो वो शंकराचार्य मेरे को वो बात आएगी, अभ्यास नहीं स्वाभाविक। मैंने जैसे दोला का दृष्टांत दिया जिनका, उसकी क्षमता स्वतः आती है, वो स्वतः आती है, उसमें स्थिति होनी चाहिए आपकी स्वाभाविक। खूब आप समझो और पूछो। मैं अपनी कमजोरी मानता हूँ कि मैं बात पूरी कह नहीं सका, आपका पूरा समाधान कर नहीं सका, तो मेरी कमजोरी में बार बार पूछो। इस बात ऐसी है, ये मेरा विश्वास है।
अभ्यास नहीं
है इसमें, अभ्यास बिल्कुल नहीं। सहज आवश्यक तो सहज तब होगी, अभ्यास नहीं करोगे निरोध नहीं करोगे तो सहज अवस्था स्वतः है। तो स्वतः अब एक दो सहज नहीं हो जाओ, ऐसे हो जाओ, वो सहज अवस्था की चीज है। एक दो सहज तीन सहज, ये संग्रह होगा, जैसे अभ्यास करने से संग्रह होता है, ऐसे आपकी एक संग्रह होगा। ये संग्रह बढ़ जाएगा तो स्वतः हो जाएगा, फिर इस निर्वृत्ति का आनंद आ जाएगा। मन खिंच जाएगा, महाराज मन खिंच जाएगा, चित्त विदेश छोड़ो, क्योंकि वृत्तियों के साथ में विक्षेप होता है और रहित होने से विक्षेप रहित होता है। तो इसमें बड़ी शांति मिलती है, एकाग्रता में शांति मिलती है, एकाग्रता से ज्यादा शांति मिलती है। इस तरह का लग जाएगा तो पता लगेगा। आजा बात आजा तो मैं कहूँ संग्रह बिल्कुल होता रहे न होता रहे,
श्वास लेने
नहीं लेता है तो गलती करता है। श्वास लेने को ध्यान ही नहीं, श्वास आता है कि नहीं आता है कोई मतलब नहीं बने, इसमें मतलब नहीं। करना न करना किसी के साथ संबंध, खुद प्रकृति के साथ संबंध होगा। श्लोक पता है कि नहीं होते थे कृत्य ना सर न अकृत्य नहीं अगस्त न सर सर्वभूत विपास है ये तत्व लेना। अभ्यास करो, अभ्यास का निषेध नहीं करता हूँ मैं, ये बार बार आपको कहता हूँ, मैं अभ्यास का निषेध नहीं करता हूँ, मैं जब ध्यान का निषेध नहीं करता हूँ। मैं तो एक बात जो इससे आगाह की है वो किस दिन हमारे माथे में बैठ जाए, ये बात मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, मैं निषेध नहीं करता हूँ। आगे चलकर आपको इतनी धैर्य जितना धैर्य है तो रखो, हम क्या अभी मर जाए क्या पता, इतना धैर्य आपके पास है तो धीरे धीरे करो। हम तो एक क्षण का पता नहीं भाई मर जाए क्या पता है, तो ये तो काम कर दे सब साथ। ये बात है, जिसको बहुत धैर्य आगे करता है, जन्म जन्मांतर करो, इस जन्म में करो, वर्षों तक करो, मना कौन करता है। तो हम तो उसी कहते हैं जिसको भरोसा नहीं एक क्षण का भी, उसी मुक्ति कैसे हो। चलेगा कि नहीं चलेगा आप क्यों करो, पहले करके देखो। हम कहते नहीं चलेगा, परंतु एक क्षण दो क्षण तो चला कि नहीं, अगर ही मैं चला कहते ही नारायण 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 नारायण। अब बोलो साहब,
आगमन में ये बात आई कि आप लोग सब भाई बहन ध्यान दें बात पर, शास्त्रों में उत्तमा सहजावस्था सबसे श्रेष्ठ सहजावस्था का वर्णन आता, इसको श्रेष्ठ मानते हैं। सहज तन मन कर सहज पूजा, सहज सा देव नहीं और पूजा, सहज के समान कोई पूजा नहीं है। सहज हमारे को सहज का सहज किया दुष्का हरिया जीव शिव का एक नाम बिठा, तो सहजावस्था की महिमा बहुत है। संतों की वाणी नहीं आई है और सहती आई, वो सहजावस्था सहज से ही अपने को प्राप्त हो सकती, बहुत सुगमता से। उसकी एक बात बताना आपको, आप जहां जैसे बैठे हैं वहीं बैठे रहे, आंखें भले ही मीच लें, अब कोई भी संकल्प ने करना नहीं है, कुछ भी याद करना नहीं है, न संसार को न भगवान को, कोई संकल्प नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना, कुछ भी पूर्णा नहीं करनी है, ऐसे भाव को बैठ गए। श्वास को बाहर पहले ऐसे करके बाहर ही श्वास को रख करके और चुप हो जाए, फिर धीरे धीरे श्वास आ जाए। इसको भी ख्याल नहीं था श्वास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई बात याद आ रही है कि नहीं आ रही है, कुछ भी अपने चिंतन नहीं करना है, कुछ नहीं चिंतन करना है। अब ऐसे बैठे और चिंतन आ जाए तो उस चिंतन के साथ में न राग करे न द्वेष करे, अच्छा ज्यादा हर्ष करे ना विषादी दुख करे, आ जाए वो चला जाए, जैसे हवा ही बह गई अपने बस है, बाहर वर्षा हो गई और बंद हो गई तो हमारे क्या फर्क पड़ा। ऐसे कोई पूर्ण आ जाए चले जाए, उसको ना अच्छी समझे ना उसको मंदी समझे, उसे मतलब नहीं, अपने साथ में कोई संबंध नहीं है, ऐसे का चुप शांत रहे। ऐसे दो चार सेकंड भी रह जाए, पांच दस सेकंड रह जाए, बड़ा बड़ा बल मिलेगा। ये क्या होगा, वो सहजावस्था जिसकी महिमा है ना, सहजावस्था की, वो सहजावस्था प्राप्त हो जाएगी। सहज का क्या है कि स्वाभाविक, तो ये जो कुछ भी फूलना है ये स्वाभाविक है, फूलना है क्रिया है, ये कृत्रिम है, ये बनावटी होती है। महाप्रलय के बाद महासर्ग होता है तो एको हम भविष्य में ऐसा संकल्प होता है, पूर्णा होती है, उसके बाद सृष्टि की रचना होती है। तो सृष्टि मात्र का कारण पूर्णा है, तो कुछ भी पूर्णा नहीं होगी, वो सहजावस्था है, स्वाभाविक है, स्वतः सिद्ध है, और वो सबको प्राप्त है, स्वाभाविक प्राप्त है, किसी को अप्राप्त नहीं है। क्रिया का वेग होने से क्रिया आती है, इस बात को भेद है भीतर, वो भेद तंग करता है तो उसको अपना नहीं माने, अपने संबंध नहीं जोड़े, वो शांत हो जाएगा आप से आप, जैसे कुम्हार का चक्का होता है घूमते घूमते आप से शांत हो जाता है, जैसे दोला है ऐसे हिंड है रोकती होती आप से आप शांत हो जाती है, ऐसी क्रिया शांत हो जाएगी। उसके साथ संबंध आप जोड़ो कुछ संबंध नहीं, अभी तक इतने जन्म बीत गए शांति नहीं, क्यों अपने संबंध जोड़ देते हैं, अच्छा मान लेते हैं, मंदा मान लेते हैं, हम कुछ भी संबंध में जोड़े तो वो एक और आप साफ शांत हो जाए। क्यों कि सहजावस्था तो चुप होना है, ये क्रिया करना सहजावस्था नहीं है, ये तो कृत्रिम है, बनावटी है, और कुछ भी नहीं करेंगे तो स्वाभाविक जो चीज है वो स्वतः हो जाएगी, स्वाभाविक ही। और उस स्वाभाविकता में दो चार सेकंड भी आप ठहर गए तो उससे भी एक बल मिलेगा, अभी पता नहीं लगेगा उसका, अभी पता नहीं लगेगा, ऐसे कुछ दिन करने के बाद एक बल प्राप्त होगा, शक्ति प्राप्त होगी। वो शक्ति ऐसी है कि राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, ये स्वाभाविक कम हो जाएगी, इनको दूर करने की, चंचलता को दूर करने की एक सामर्थ्य आ जाएगी, स्वतः स्वाभाव, उसमें इतनी अपार शक्ति है, अनंत शक्ति है, वो सब प्रकट हो जाएगी। रहते हैं ये भी मन में नहीं रहा कि वो शक्ति प्रकट हो जाए, ये प्रकट न हो जाए, अभी तक हुई नहीं, ऐसा संकल्प न करे, कुछ भी न करे, आत्मसंस्तम मना कृत्वा न किंचित भी चिंतिए, ऐसे चुप होकर कुछ भी चिंतन ना करें, चिंतन करे नहीं, हो जाए तो उसके साथ परवाह नहीं, उसके साथ संबंध जोड़े नहीं, ना अच्छा माने ना मंदा माने, ना ये कि संकल्प होता रहे करे, ना भी ये संकल्प मिट जाए या पैदा न हो, ऐसा कोई भाव नहीं, अपने मतलब ही नहीं। तो ये जो फूलना और क्रियाएं होती है ये सब प्रकृति की है, जब आप संबंध रहित हो जाएंगे तो प्रकृति से अतीत तत्व में स्थिति हो जाएगी, और वो अतीत में स्थिति स्वतः है, गुणातीत पुरुष होता है, वो बढ़ता नहीं है, गुणों से संबंध होने पर, गुणों से संसर्ग होने पर जन्म मरण होता है, कारण गुण संगो से सदा सदी होनी जन्म सु, नहीं तो उन गुणों से अतीत स्वतः है, स्वाभाविक स्वाभाविक गुणातीत हो, इसमें चुप हो जाता, तो ऊंची से ऊंची गुणातीत होता वो स्वतः हो जाएगी, स्वाभाविक सहज। अभी नहीं हुई तो गीता में आया है सर्वस्तीन योगतव्य योगो निर्विन्न चेतसा उकसावे नहीं, अनिर्विन्न चेतसा उकसावे नहीं, शनि शनि ऊपर अपने को प्राप्त हो जाए। ईसा दिन या नहीं हुआ, आगे तक नहीं हुआ, तो भी क्या हुआ क्या नहीं, वो तो है दीर्घ से आगे एक है, वो तो तत्व तो है जो ही है, वो है क्या, वो तो हुआ हुआ है ही है। अपने जो चंचलता बनाई है ये अपने बाधक हुई है, और वो तो है ही स्वतः ही, जब इसकी उपेक्षा कर देंगे उदासीन हो जाएंगे, ये स्वतः शांत है, स्वाभाविक ही समझ जाएगा। तो उगता नहीं, कितना दिन हो गया, कितने महीना हो गया, कितना वर्ष हो गया, कितने जन्म, कुछ नहीं, कहाँ हो गया क्या हुआ, कुछ नहीं है परमात्मा पर। तो वो परमात्मा की सत्ता है स्वाभाविक, वो स्वाभाविक सबको प्राप्त है, सबकी स्थिति उस परमात्मा में स्वतः सिद्ध है। प्रकृति प्रकृति कार्य के साथ कुछ राग होने से ये सब संसार है, वो अगर राग न हो तो कोई कारण नहीं है, वो तो स्वतः सिद्ध है। जैसे उसका अतल्पना सिद्ध है, ऐसे प्रकृति का परिवर्तनशील स्वतः सिद्ध है, ये स्वाभाविक ही सक्रिय अक्रिय नहीं होती है। स्वर्ग अवस्था में भी अक्रिय नहीं होती, तो प्रलय अवस्था में महाप्रलय अवस्था में भी प्रकृति अक्रिय नहीं होती। स्थूल क्रिया इसकी स्वर्ग अवस्था में होती है, प्रलय में और महाप्रलय में स्थूल क्रिया नहीं होती है, परंतु एक क्रिया होती है। जैसे आप नींद लेते तो नींद में कोई क्रिया नहीं करते, सब क्रियाओं छोड़ जाते सिर्फ तो नींद आ जाती है, पर नींद में भी क्रिया होती है। क्या पता कि आप 10-11 बजे सोए और 12 बजे जगा ले तो आंखें नहीं खुलती, कहते थे कच्ची नींद में जगा जाता है, कच्ची नींद में, और 3-4 बजा उधर खुल जाती है, आंखें साफ हो जाती, ठीक। तो नींद पक्की है भाई, तो कच्ची से पक्की होती है तो उसमें क्रिया होती है, फल भी कच्चे से पकता है तो उसमें क्रिया होती है, बिना क्रिया पकड़ कैसे, ऐसे नींद में भी क्रिया नहीं हो तो नींद पकड़ कैसे। अब नींद पक गई, अब कच्ची नींद है, तो कुछ भी क्रिया न करने पर भी प्रकृति क्रियाशील है, और परमात्म तत्व सब कुछ करने पर भी ये इसमें कर्तृत्व नहीं है, वो अकर्ता रूप स्वतः सिद्ध है और ये क्रिया रूप स्वतः ही है। तो जब आप कुछ नहीं करेंगे, कोई उनके साथ संबंध नहीं जोड़ेंगे, तो आपने स्वरूप की प्राप्ति स्वतः है, और इसका संबंध विदेश भी स्वतः है, वो तो आपका किया हुआ संबंध है, इसके साथ स्वतः संबंध नहीं है। अगर आप संबंध नहीं करेंगे तो उसके साथ संबंध रहित होना स्वाभाविक एकदम स्वतः। एक दो दिन समझ में ना आओ तो कोई परवाह नहीं, ऐसा आप करो, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, करना क्या है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना ही करना है, कुछ नहीं करना, सुख शांत बाहर से भीतर से मन से बुद्धि से अहम से, कुछ मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, हो गई क्रिया तो कोई हो गई, नहीं हो गई तो नहीं हो गई, समुद्र में लहर आ गई उठ गई फिर शांत हो गई तो हो गई, ऐसे कोई फूलना हो गई तो हो गई, उनके साथ एकदम। तो ये अकल में नहीं आया तो कोई परवाह नहीं, कुछ करना नहीं है, मैं तो कुछ सोचना नहीं है, और स्वतः कोई वृत्ति हो उसके साथ ना अच्छी मन से मांगना है, ना मंदी मांगना है, ना वो पूरा होता रहे ऐसी भावना करना है, और ना ये न हो जाए भावना करना है, ये फूलना बंद हो जाए ऐसा भी नहीं करना है, चलता रहिए, अपने ख्याल ही नहीं करना, अपना संबंध विच्छेद कर देना है। जैसे संसार में बहुत से पाप और पुण्य होते हैं, पर हम संबंध नहीं जोड़ते तो पाप नहीं लगता, पुण्य भी नहीं लगता, ऐसे आपकी फूलना में आप संबंध नहीं जोड़े तो संसार मात्र की क्रिया जो ये पूर्ण हो जाएगी, होकर आप शांत हो जाएगी, न शांत हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगी, अपने क्या मतलब उसे, न शांत से मतलब है, न उसी चंचलता से मतलब है, अपने कुछ मतलब नहीं, ऐसे चुप हो जाए। स्वाभाविक शांति है, स्वतः सिद्ध शांति है, स्वाभाविक। जैसे साहित्य में यथा प्रकृति जलस्य, जल की प्रकृति ठंडा होना है, गर्म कर देते हैं फिर पड़ा पड़ा ठंडा अवसाद हो जाता है, आप ही ठंडा हो जाएगा क्योंकि वो ठंडा प्रकृति है। ऐसे ही आप साफ शांत हो जाएंगे, प्रकृति करते करते आप साफ शांत हो जाते हैं। इसके साथ आप संबंध जोड़ देते हो तो उनसे वो कर्म बनता है, और बिना संबंध जोड़े क्रिया होती है, कर्म नहीं बनता, शुभ अशुभदायक कर्म नहीं बनता। कर्म में अकर्म है, सब क्रिया हो रही है कुछ नहीं कर रहे हैं। संबंध जोड़ोगे तो पाप और पुण्य हो जाएगा, पाप अथवा पुण्य होगा, कुछ न कुछ से पक जाएगा। और संबंध कुछ नहीं जोड़ोगे तो कुछ नहीं होगा, अनंत जन्मों से संबंध जोड़ा हुआ आप एक क्षण में छोड़ सकते। मन को पूर्ण रूप से आएगी तो आगे, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। ये जो मन को लगाने की चेष्टा है, इसकी अपेक्षा कुछ नहीं लगाना, चुप रहना, ये बहुत ही उत्तम चीज है। लगाने से मन जल्दी नहीं लगता, कारण कि एक तो मन मेरा है और एक लगाने की चेष्टा है, तो मेरा पर और क्रिया साथ रहने से मन जल्दी शुद्ध और एकाग्र नहीं होता। और संबंध विच्छेद कर दें और करें कुछ नहीं अब, तो स्वतः ही शांत हो जाएगा, मन स्वाभाविक शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। परंतु ये परीक्षा नहीं करे कि मन शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ, निर्मल हुआ कि नहीं हुआ, एकाग्र हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा नहीं देख देख रहे, अपना मतलब नहीं है। जिस चीज को अपने छोड़ के कूड़ा कर घर से झाड़ू देकर बाहर फेंक दिया, वो क्या काम आया, किसके काम आया, उसकी क्या दशा है, क्या अवस्था है, अपने तो कूड़ा कर फेंक दिया अवस्था ही क्या, उसको हमें मतलब क्या है, कुछ मतलब नहीं। चट्टी भरिया है वो किसी काम आई, क्या हुआ, कैसी है, अब क्या मतलब, चट्टी भर लिया बस, ऐसे संसार सबकी चट्टी भर जा, अब कैसा है कैसे नहीं, क्या मतलब, ऐसे समझे सोचा है। बहुत सुगमता से बहुत श्रेष्ठ तत्व मिल जाएगा, ऐसा आप विश्वास रख सुख हो जाएगा। गीता ने कहा है आत्मसंतोषन कृपा न किंचित भी चिंतन, कुछ भी चिंतन न करे। आ जाता है चिंतन, उसमें संबंध जोड़ने से वो करना हो जाता है, नहीं तो हो जाएगा। पहले करना होता है फिर होना होता है, होने के बाद में है हो जाता है, फिर है ही नहीं जाता है। अस्तित्व तत्व है वो है जो बताएंगे। अब इसमें कोई समझ में नहीं आई तो पूछना, भगवान की भक्ति होगी तो प्रेम प्रकट हो जाएगा, ज्ञान का मार्ग होगा तो आपके बोध हो जाएगा, अरे योग का मार्ग हो जाएगा तो समता आप में स्वतः आ जाएगी। आपकी जो रुचि है सगुण की, निर्गुण की, साकार की, निराकार की, वो आपकी रुचि के अनुसार वो भगवान का स्वरूप प्रकट हो जाएगा स्वतः ही स्वागत। तो उसके साथ संबंध मत जोड़े, अपना कोई संबंध नहीं, ना अच्छा संबंध मानना ना बुरा संबंध, मन राजी होना ना नाराज होना।
भगवान के अपने पन में राजी नहीं हुए क्या उससे?
ना, वो तो आप हरदम रहो राजी, भगवान अपने हैं, उनका चिंतन करो, जप करो, ये हर समय करो, बट ये एक करके देखो, जैसे अभी बैठे हो ऐसा करके देखो। कुछ नहीं करना है हमें, ना भगवान का चिंतन करना है, ना संसार का चिंतन करना है, एक बात का ख्याल रखना है, नींद ना हो, नींद आ जाएगी तो समग्र जाएगा, नींद ना आओ, आए नींद तो खड़े हो जाओ, थोड़ा घूमने लग जाओ, और कुछ नहीं देखना। लिखा है विक्षिप्तम समये चित्त विक्षेप को शांत कर दे, और सम प्राप्त न चालिए, समता न प्राप्त होने को कुछ चलाए मन न कर। मानो उस मन में चंचलता हो तो उसको शांत कर दे, ऐसी बात आई है, शांत करना नहीं है, संबंध छोड़ देने से आप शांत हो जाएगा, और न हो तो हमारा मतलब नहीं है। ऐसे और लय संबोध या चित्तम, लय हो जाए, नींद आवे तो उसको जिसको जगा देना, बस जगा देना, अब चिंतन में कुछ नहीं करना, अंदर खड़ा होकर थोड़ा घूम लो फिर बैठ जाओ। नींद खुलते ही अगर ऐसा करो तो बहुत ही बढ़िया बात है। आधे मिनट नहीं, मैं तो दो चार पांच सेकंड भी, आधे मिनट 30 सेकंड होते हैं, दो चार पांच सेकंड ही हो जाए, ऐसे दिन में कई बार करो, चलते चलते खड़े रहकर चुप हो गए, चलते चलते ही खड़े रह गए, कुछ नहीं कर रहे, बैठे बैठे ही आगे बढ़े, कुछ नहीं करना, काम धंधा करते ही बीच में कुछ नहीं करना, बोलते बोलते चुप और कुछ नहीं करना, ऐसे हर एक काम चट्टी के साथ करते हुए कुछ नहीं करना, जब ध्यान इतनी कम करते हुए भी कुछ नहीं करना, हर एक अवस्था में सोता है, क्योंकि सजा अवस्था स्वाभाविक है, सदा प्राप्त है, वो अप्राप्त है ही नहीं कभी किसी के लिए भी, पापी से दुराचारी से भी अलग रहे, सोते सोते इधर केवल आप ख्याल कर रहे हो, तो कुछ अपने मतलब नहीं है, किससे कुछ रहना नहीं है, अब करो इसमें जो जो शंकाएं हो, बाधा आती हो, वो अड़चन आती हो, पूछो नारायण 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 राम 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 राम।
अब कहा कहूं कछु कही न जाए, अब कहा कहूं कछु कही न जाए, जब हम तुम हम रहे बिलाए, जब हम तुम हम रहे बिलाए, अब कहा कहूं कछु कही न जाए, जस लवन परो है सिंधु माए, जस लवन परो है सिंधु माए, जेहि खोजत पावत कछुक नाए, जेहि खोजत पावत कछुक नाए, अब कहा कहूं कछु कही न जाए, जब तुम हम रहे बिलाए, अस जीव ब्रह्म को मिट्यो भेद, अस जीव ब्रह्म को मिट्यो भेद, संसार भरम को भयो निषेध, संसार भरम को भयो निषेध, अब कहा कहूं कछु कही न जाए, जब तुम हम रहे बिलाए, जस बर्फ रूप अरु जलाकार, जस बर्फ रूप अरु जलाकार, दो भिन्न भिन्न दिखत न सार, दो भिन्न भिन्न दिखत न सार, अब कहा कहूं कछु कही न जाए, जब तुम हम रहे बिलास, जस खांड खिलौना रूप रंग, जस खांड खिलौना रूप रंग, बहु भांति न कर आकार ढंग, बहु भांति न कर आकार ढंग, गए अब कहा कहूं कछु कही न जाए जब हम तुम हम रहे बिलार जब खांड गली है मिटा भेक जब खांड गली है मिटा भेक तब खांड खिलौना एक मेक तब खांड खिलौना एक मेक कब कहा कहूं कछु कही न जाए जब हम तुम हम रहे बिला जसताने बाने एक सूत जसताने बाने एक सूत अस ब्रह्मई कर से जीव भूत अस ब्रह्मई कर से जीव भूत अब कहा कहूं कछु कही न जाए जब हम तुम हम रहे बिलाय कहे किसन दास आत्म प्रकाश कहे किसन दास आत्म प्रकाश जो घट बाहर भीतर आकाश जो घट बाहर भीतर आकाश अब कहा कहूं कछु कही न जाए जब हम तुम हम रहे बिलाय अब कहा कहूं कछु कही न जाए।